हरे कृष्ण। तो आज हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा का आखिरी दिवस है, 16 अक्टूबर कार्तिक मास, और हम श्री चैतन्य गौड़िया मठ में बैठे हुए हैं। ये जगह जो है, ये प्रभुपाद जी एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनके गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, इनका जन्म स्थान है। और उनके पिताजी ठाकुर भक्त विनोद, इनका घर है। तो हमारे में से कुछ लोग पिछले साल मायापुर गए थे, आपको याद है ना, तो उनके घर में गए थे हम, गोद्रुमा द्वीप नाम की जगह पर। और ये गोद्रुमा द्वीप नाम की जगह है, वो नवद्वीप में है। उसका घर का नाम है स्वानंद सुखदा कुंज, जो ललिता देवी का भगवान के धाम में जो कुंज है उसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। वही नाम उन्होंने अपने घर को दिया है गोद्रुम द्वीप में। लेकिन उसके बहुत पहले की बात है, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद जी, उनका नाम था केदारनाथ दत्त, आगे जाकर उनका जो स्पिरिचुअल नाम है वो ठाकुर भक्ति विनोद है। और वो पेशे से एक बड़े मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और अंग्रेज़ों के ज़माने में वो इतने बड़े अधिकारी थे कि कुछ समय बाद में उन्होंने अपने सेवा को छोड़कर रिटायरमेंट लेने को चाहा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके सेवा से इतने प्रसन्न थी कि उन्होंने कहा कि आपको काम छोड़ कर कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा लाइफ का मिशन जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना है, इसलिए मैं नवद्वीप धाम जाऊँगा और नवद्वीप धाम में मुझे अपना जीवन कार्य करना है। तो कहाँ रहेंगे आप? गोद्रुमा द्वीप में रहेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केवल एक यात्री के लिए, ओनली फॉर वन पैसेंजर, कलकत्ता से, कलकत्ता के कोर्ट का जो उनका ऑफिस था, कलकत्ता कोर्ट, वहाँ से लेके मायापुर में नवद्वीप धाम तक दे पुट रेलवे लाइन, ओनली फॉर वन पैसेंजर, एक बोगी, एक पैसेंजर, मोटरमैन, दैट्स इट, और गार्ड्स। और आज भी वो रेलवे लाइन कार्यरत है, आप देख सकते हैं, बहुत लोगों ने इस पे से देखा हुआ है कि रोज भक्तिविनोद ठाकुर जी वहाँ पर सुबह बैठते थे और ट्रेन से कलकत्ता पहुँचते थे, और 4 घंटे में 16 घंटे का काम करते थे। जो आम न्यायमूर्ति होता है ना, न्यायाधीश, वो 16 घंटे में जितने केस निपटाएगा ये 4 घंटे में निपटाते थे। और इतने वैल्यूएबल ये अफसर थे कि ब्रिटिश लोग जो थे ना वो बहुत चालाक थे, उन्होंने गुलामगिरी हमारे ऊपर लाद दी थी, शरीर से नहीं मन से भी। हाँ, इस तरह से हमको ट्रीटमेंट दिया था कि मन से भी भारतीय लोग उनके गुलाम बन गए थे। ऐसी अवस्था में जब उनकी भारतीयों को देखने की जो प्रवृत्ति है वो इतनी तुच्छ प्रवृत्ति है, इस अवस्था में भी, इस स्थिति में भी ठाकुर भक्तिविनोद का वो इतना सम्मान करते थे, तो कैन अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट ही मस्ट बी। कितने बुद्धिमान होंगे, कितने कार्यकुशल होंगे, अपने पेशे में कितने वो एक्सपर्ट होंगे, दक्ष होंगे, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। तो जब भी हम ठाकुर भक्तिविनोद के घर के सामने वो ट्रेन देखते हैं, उनको बहुत गर्व होता है कि हमारे संप्रदाय के हमारे आचार्य हैं, दिस इज आवर फैमिली, इज आवर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि दीक्षा लेने के पश्चात गुरु महाराज हमारे पिताजी बन जाते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर। और उनके गुरु महाराज जो है वो हमारे दादा गुरु बनते हैं, तो ये हमारे दादा गुरु जी का, सॉरी, प्रभुपाद जी हमारे दादा गुरु हैं और उनके गुरु महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, इनका ये घर है, तुम्हारे परदादा गुरु हो गए। और एक्चुअली ये घर उनके पिताजी का है, ठाकुर भक्ति विनोद, तो इज़ अ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ आवर्स। और जब हम अपने पिताजी के घर में जाते हैं तो थोड़ा शासन हमारे ऊपर होता है, हाँ थोड़ा सा, लेकिन दादा के घर आने पर क्या होता है, नो शासन, ओनली लव। अब यहाँ पर जयत्र की दादी है ना, देर इज़ नो शासन, ओनली लव, एंड हायर यू गो एंड मोर लव इज़ देयर। इस प्रकार से ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी का थोड़ा बहुत कृपा दृष्टि और प्रेम लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ठाकुर भक्ति विनोद पेशे से बैरिस्टर थे, मजिस्ट्रेट थे, पोस्ट थे, और उनकी दिनचर्या यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मुझे बहुत लगा कि पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, लेकिन हमारे पूरे संप्रदाय में वो एक ही गृहस्थ आचार्य है, इज ओनली गृहस्थ आचार्य, मैरिड मेम्बर, येड वाइफ, उनको मेरे ख्याल से 10 बच्चे थे, कुछ लोग कहते 13 थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उनमें से 6 लोग सन्यासी बने, उनमें से एक है ठाकुर भक्ति सिद्धांता। उनकी माता ने उनके जन्म के लिए बिमला देवी से बहुत प्रार्थना की थी। और ठाकुर भक्ति विनोद ने सबसे पहले जो इंग्लिश में आर्टिकल था जो इंग्लैंड में उन्होंने भेजा छपने के लिए, वो ठाकुर भक्ति विनोद ने भेजा था। उनकी बहुत इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था पृथ्वी ते आचे सर्व नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरे नाम। महाप्रभु जी ने कहा था 500 साल पहले कि मेरा नाम जो है कृष्ण का नाम वो हर एक गाँव में हर एक शहर में गूंजेगा, उसका प्रचार होगा, कोई भी शहर कोई गाँव बचेगा नहीं। तो ये उनकी दृष्टि थी, मतलब विजन था उनका, वो पूरा करना उनको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था, इसलिए उन्होंने वो आरंभ किया था अंग्रेजी में लिटरेचर भेजना। तो साथ साथ जब भी उनकी उम्र हो रही थी, उनका और एक सहयोग है, बहुत सारा उनका जीवन ही बहुत पवित्र है ठाकुर भक्ति विनोद की, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मस्थान था जो कुछ समय बाद लुप्त हो चुका था, वो जन्मस्थान को उनके शिक्षा गुरु जिनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा जी, जो 125 साल के थे, जो 144 ईयर्स तक जिए जगन्नाथ दास बाबा जी, उनके भी हम लोग समाधि में गए थे, याद है आपको कोला द्वीप में। तो उन्होंने उनके सहायता से प्रभुपाद जी मतलब चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान जो है योगपीठ को प्रकट किया, वो लुप्त हो चुका था क्योंकि गंगा नदी के प्रवाह से सारा नवद्वीप धाम पानी से भर गया था। कई साल तक ऐसे रहा, 100 साल तक। उसके बाद में अभी केवल आज से 125 साल पहले ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत सारा रिसर्च किया, अलग अलग ग्रंथों का रिसर्च किया, कौन सी दिशा में गंगा की था, वो किधर था, किस तरफ था, अंतर्द्वीप से कितना दूर था, यहाँ से कितना दूर था, वहाँ से कितना दूर था, ये सब कुछ साइंटिफिकली। क्योंकि कैसे है ना, आज भी लोगों को हम कुछ बताते हैं कि ये भगवान का जन्मस्थान है तो लोग मानते नहीं, ऐसे केयर भावना से उनको सिद्ध करना पड़ता है। तो शास्त्रों के आधार पर और भौगोलिक सत्य के आधार पर उन्होंने साइंटिफिकली बहुत शास्त्रीय दृष्टि से इस जगह को प्रकट किया। तो ये उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मायापुर में हम जाएंगे अभी तो अंतर्द्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान है नीम के पेड़ के नीचे। जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उन्होंने बहुत उम्र ने अफसोस इसके पहले की बातें बोली, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु का एक किरण पुत्र के रूप में जन्म ले। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बिमला देवी से उन्होंने भगवान कृष्ण से बहुत प्रार्थना की कि विष्णु का एक तेज पुंज किरण पुत्र के रूप में आ जाए। यथावकाश उनकी माता उनकी पत्नी गर्भवती रही और बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा उन्होंने केदारनाथ, सॉरी उनका नाम रखा बिमला प्रसाद, क्योंकि ये बिमला देवी के प्रसाद से जन्म हुआ था उनका। जन्म के कुछ महीने बाद 6 महीने के बाद में रथ यात्रा का महोत्सव था, क्योंकि उनका जन्म दिन जो है वो हमेशा जनवरी में आता है, उनका तिरुभाव दिन जो है वो हमेशा दिसंबर में आता है। तो जन्म होने के पश्चात 6 महीने के बाद जून में रथ यात्रा होती है। हाँ, तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ आके यहाँ इनके घर के सामने रुक गया। मैंने जब कहा था ना आपको कि रथ यात्रा जो है वो चलती भगवान की इच्छा से, रुकती भगवान की इच्छा से, सब लोग खींच रहे हैं, लेकिन इनके घर में आके जब रुक गया तो आगे ही नहीं बढ़ा। ठाकुर भक्ति विनोद जी तुरंत घर में गए, माँ पत्नी को कहा कि बालक को लेके आओ, और तुरंत वो बालक को लेके आए, छोटे से बालक को। उन्होंने बालक को जगन्नाथ के चरणों में रखा, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद जी वैसे भी बड़े अधिकारी हैं, उनको ये सम्मान था। मेरे बांध से उन बच्चे को जगन्नाथ जी के रथ पे उनके चरणों में रखा गया और तुरंत जगन्नाथ जी के गले से एक माला गिरी और सीधे इसके गले में गिरी। तभी ठाकुर भक्ति विनोद को ये विश्वास हुआ कि जो मैंने प्रार्थना की थी उसका उत्तर ये है। तो ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर विमला प्रसाद दत्त यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ है। और इनका एक वैशिष्ट है कि जन्म से ये नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले थे। नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि ब्रह्मचार्य जो होते हैं वो ट्रेनिंग में होते हैं, ट्रेनिंग उनके मन में भी कभी कभी कामना वासना हो सकती है और उनको विवाह करने के लिए परमिशन है। उसके बाद में अगर वो ब्रह्मचारी रहते हैं कुछ साल, विद्या अध्ययन करते हैं, तो उसके बाद में वो विवाह कर सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। और कभी कभी हो सकता है कि भावनावश उनके शरीर से वीर्य भी निकल सकता है, इट्स पॉसिबल, इच्छा से नहीं लेकिन शरीर के स्थिति के अनुसार, जवान स्थिति के अनुसार। लेकिन भक्ति सिद्धांत जी ऐसे ब्रह्मचारी थे कि जीवन भर में उनके शरीर से एक बुंद भी वीर्य नहीं निकला उनके शरीर से। ऐसे ही ब्रह्मचारी को ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते, उसके आगे उन्होंने संन्यास लिया जिनका नाम पड़ा फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। इनकी लीला मैं कल आपको बताने वाला था, कि बहुत देर हो चुकी थी, वो सब थक गए थे। यहाँ पर उनका विशेष रूप से यहाँ पर जो एक लीला वो यहाँ पर हुई थी, और वो अलारनाथ में जाते थे हमेशा, और अलारनाथ में जाकर उन्होंने बहुत दिव्य अनुभव किए हैं। अलारनाथ ये श्री वृंदावन धाम का प्रकटीकरण है, श्री गोवर्धन धाम है वहाँ पर, और वहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है, ये उन्होंने प्रकट किया है। और जो रहस्य है लीला का, जो मैंने आपको कल संक्षेप में बताया, थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा आपको, कि रासलीला जो है ये भगवान के अपने भक्तों के लिए प्रस्तुत किया हुआ सबसे श्रेष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। मतलब इन शॉर्ट, द लॉर्ड कैन एक्सप्रेस हिज हाइएस्ट लव फॉर यू थ्रू रासलीला, विच मीन्स रासलीला इज द हाइएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लव फॉर एनी डिवोटी फ्रॉम कृष्णा। एक किसी भक्त के लिए अगर भगवान सर्वोच्च प्रेम दिखाना चाहते हैं तो वो रासलीला है। और हमारा भाग्य क्या है कि वही रासलीला का परमोच्च आनंद गौलोक एर प्रेमधन, क्योंकि रासलीला केवल पृथ्वी पर नहीं होती है, गौलोक धाम में नित्य लीला है भगवान की। तो ये रासलीला जो है इसका सार जो है वो हमारे लिए भगवान ने प्रकट किया है चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। गौलोक एर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, पृथ्वी पर यही रासलीला जो है वो हरिनाम संकीर्तन के रूप में प्रकट होती है। तो हम लोग रासलीला में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। शिव जी आए उनको भी रोका गया, लक्ष्मी जी आई उनको भी रोका गया, प्रवेश नहीं मिला उनको, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने ऐश्वर्य को छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं था। ललिता देवी ने उनको बताया कि आपको पहले ये गोपियों के हाथ के गोपियों की सेवा के रूप में गाय को दूध निकालना पड़ेगा, गोबर साफ करना पड़ेगा, कंडे बनाने पड़ेंगे। बोले मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं तो भगवान के साथ में रहती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। बोले जब तक आप गोपियों की दासियों की दासी नहीं बन सकती है तब तक आपको रास में प्रवेश नहीं हो सकता। और रास में जो है नम्रता वती अति आवश्यक है, कोई भी अपना पोजिशन लेकर रास में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसे सभी देवता लालायित रहते हैं, लेकिन उनको भी प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं है। केवल नारद मुनि एक बार अर्जुन गोपी बनकर गए तो उनको प्रवेश मिला। पुरुष शरीर छोड़कर उनको गोपी का शरीर धारण करना पड़ा, औरत का श्रृंगार करना पड़ा, तब जाके उनको रासमंडल में प्रवेश मिला और दर्शन हुआ उनका। नारद मुनि भी नारदीय गोपी बने और माधवी गोपी ने उनको हाथ पकड़कर अंदर ले गए। वो शिवजी महाराज भी गोपीश्वर बने। हाँ, मैंने आपको ये कथा वृंदावन में बताई है बहुत सारी। और देवता लोग जो गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, किम पुरुष लोग के जितने भी संगीतज्ञ लोग हैं वो भी चाहते हैं कि रास में जाकर नृत्य करें, संगीत बजाए, वाद्य बजाए, गाएं भगवान के लिए, लेकिन किसको प्रवेश नहीं मिलता है। केवल आकाश में मंडराते हुए वो लोग रास मंडल के अंदर चलते हुए संगीत को साथ दे सकते हैं, बस केवल अपनी तरफ से वाद्य बजाकर फूल बरसा सकते हैं ऊपर से, दैट्स ऑल देयर पार्टिसिपेशन। तो हम लोग रासलीला के अंदर योग्य करने प्रवेश की हमारा कोई योग्यता है नहीं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की ये महानता है कि उन्होंने ऐसे परमोच्च स्थिति में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हमको दे दिया। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो है यही रासलीला का कलयुग में हुआ प्रकटीकरण है। इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रासलीला ऑफ कृष्णा इन कलयुग। और क्या अंतर है उसके अंदर, कृष्ण लीला में रासलीला के अंदर केवल सबसे जो उन्नत भक्त हैं वो प्रवेश कर सकते हैं, और कलयुग में इस रासलीला की जो प्रतीक है हरिनाम संकीर्तन, इसमें पतित से पतित जीव भाग ले सकता है, हम भी भाग ले सकते हैं उसके। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर काम वासना है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, देश द्वेष है, अहंकार है, फिर भी हम लोग कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह हरिनाम संकीर्तन में भाग ले सकते हैं। तो ऐसे ही रासलीला के समय पर कृष्ण भगवान अंतर्धान होते, उनके कई कारण हैं। उनका एक कारण ये था कि भगवान ने रासलीला के समय अपने आप को जितनी गोपियाँ थी, लाखों गोपियाँ थी, उनके लिए एक एक कृष्ण के रूप में रूपांतर हो गए थे, विस्तारित हो गए थे, ये एक्सपांडेड हिमसेल्फ, और वो हर एक गोपी के साथ में कृष्ण नाच रहे थे और सब मग्न होकर नाच रही थी। तो हर एक गोपी को लग रहा था कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मेरे साथ कृष्ण नाच कर रहे हैं। उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो सबके साथ नाच कर रहे हैं। तो हर एक मन के गोपी के मन के अंदर एक अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं कितनी विशेष गोपी हूँ कि कृष्ण ने मुझे चुना है अपने साथ नृत्य करने के लिए। तो जैसे ही अहंकार उत्पन्न होता है, भगवान को अपने भक्तों के हृदय के अंदर अहंकार जो है कभी अच्छा रहता नहीं। ही नेवर लाइक्स डिवोटीज टू गेट प्राउड। और भक्तों के अंदर, प्रामाणिक भक्तों के हृदय के अंदर जब अहंकार आता है तो भगवान उसको स्मैश कर देते हैं, बहुत कठोर दंड देते हैं। उनको लगता है भगवान इतने क्रूर क्यों हैं। लेकिन हमारे हृदय के अंदर जो अहंकार का क्ले तो लवलेश मात्र है तो भी उसको नष्ट कर देते हैं। तो जैसे ही अहंकार उत्पन्न होता है, भगवान सबसे अंतर्धान हो जाते हैं, अचानक सब गायब हो जाते हैं कृष्ण भगवान। अब सब गोखियाँ कहती हैं, अरे तो वो मुझसे साथ नृत्य कर रहे थे, मेरे अकेले के साथ कर रहे थे। बाद में पता चलता है कि सब गोपियाँ यही कह रही हैं कि वॉज ओनली विथ मी। तब सबको पता चलता है कि वो सबके साथ थे, फिर मेरे साथ नहीं थे। लेकिन अभी वो चले गए हैं, अभी हमारा कैसा होगा। सब रोने लगी, ढूंढने लगी उनको। तो ये रासलीला जो है खास करके गोवर्धन के आसपास हो रही थी। और गोवर्धन के आसपास वो गांव-गांव में, गली गली में, पेड़ पेड़ के पास ढूंढने लगी कि हमारे कन्हैया जी कहाँ हैं। लता पताओं को, वेलियों को पूछने लगी, कहीं तुमने कृष्ण को देखा है। सब जगह ढूंढते हुए, रोते हुए, पुकारते हुए गोपियाँ जा रही थी। भागवत में उनका वर्णन भी आता है, एक गोपी गीत का है, उन्होंने गोपी गीत गाया, भ्रमर गीत भी गाया, वेणु गीत भी गाया। भागवत में सुंदर वर्णन आता है। ये बहुत श्रेष्ठ विषय है भागवत के। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि भृण्णन्ति ते भूरिदा जनः। ऐसे करके भगवान गोपियों ने गोपी गीत गाया। उसका अर्थ यह है कि आपकी जो कथा है, आपका जो स्मरण है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जलते हुए जीवन को शांत करने वाला है। और हम लोग किससे जल रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस अग्नि से जल रहे हैं। इस तरह से वर्णन करती है और गाती गाती जा रही है, पेड़ों को पुकार रही है। अचानक कृष्ण भगवान जो है वो उनके सामने चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। अब आपको पता होना जरूरी है कि नंद महाराज के घर में भी पूजा थी भगवान की, और वो विष्णु की पूजा करते थे, नरसिंह भगवान की पूजा करते थे, वराह भगवान की पूजा करते थे, वसुदेव भी विष्णु की पूजा करते थे। क्योंकि जो परम पुरुषोत्तम आदि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं वो तो बालक बन के आए ना, लेकिन उनके आराध्य भगवान विष्णु थे। तो उनकी सभी गोपियों के माता पिताओं ने विष्णु का भजन किया है, तो उनको बताया होगा ना बचपन में कि विष्णु भगवान है करके। हाँ, उनको नॉलेज तो होगा ना कि भगवान विष्णु है। तो देख रहे हैं वो रस्ते के बीच में कमल दल, कमल के फूल के अंदर चतुर्भुज विष्णु खड़े हैं, शंख चक्र पद्म धारण करके। लेकिन उनके मन में कृष्ण के प्रति इतना भाव और इतना प्रेम, इतनी व्याकुलता है, इतनी तड़प रहे हैं वो, कि वो विष्णु को ही पूछते हैं कि कहीं आपने अपने कृष्ण को देखा है। कितनी आश्चर्य की बात है ना। दे ट्रीटेड विष्णु लाइक अ समबड़ी पासिंग बाय द रोड, रस्ते में चलने वाले राहगीर के समान उन्होंने विष्णु को समझा और पूछा कि आपने कृष्ण को देखा है। तो उन्होंने कहा कि इस तरफ गए। क्या बोलेंगे विष्णु, इतना तड़प है उनके अंदर। हाँ, सारा विश्व जो है, सारे देवता लोग ओम सहस्त्र वीर्या सहस्त्रपाद ऐसे उनको पुरुष सूक्त की श्लोक बोल के उनकी पूजा करते हैं। हाँ, वो क्षीर सागर में जो खड़े होते हैं ना, रहते हैं क्षीर सागर के अंदर, शेष शाही नाग के क्या कहते हैं उसको, बेड पर निवास करते हैं, लक्ष्मी चरणन दबाती हैं एकदम सागर के अंदर। तो ब्रह्मा जी कहाँ खड़े हैं, 33 करोड़ देवता को लेकर कहाँ खड़े हैं, किनारे में खड़े। जन्म तो उनका वहाँ से हुआ है, लेकिन बाद में जाते हैं ना अपने काम करने के लिए। सभी देवताओं को लेकर सागर के किनारे में खड़े हैं और वहीं से पुकार रहे हैं। कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, वो खाली पुकारते रहते हैं बस। संदेश आएगा नहीं आएगा, सुना नहीं सुना, वो भगवान की मर्जी है। और फिर कुछ देर बाद आता है संदेश कि मैं आऊँगा और अवतार लूँगा, आप ये करो, फिर मैं आऊँगा उसके बाद, इस जगह पर अवतार लूँगा, इसके घर में अवतार लूँगा। फिर सब जाते हैं आदेश लेकर पालन करने के लिए। आप सभी देवता लोग जो है वो इस सबके कुल में जन्म लेना देवताओं के रूप में। बस इतना ही है संपर्क भगवान का, और कोई दंडवत प्रणाम है, स्तुतियां हैं, गौरव है, श्लोक है, नृत्य है, गायन है, बस। और यही विष्णु जो है उनके सामने खड़े हैं, उनके रास्ते पे खड़े, ऐसे नहीं कि मंदिर में खड़े, अपने रास्ते में खड़े हैं जाने आने वाले, जहाँ ढूंढ रही है वो वाटिकाओं में, तो बोलते इस तरफ गए, तो उसके आगे पीछे से, उनके पीछे से राधा रानी आ रही है, वो सबसे सबसे श्रेष्ठ गोपी है, उनके भाव जो है वो महाभाव है, वैसे व्याकुल होकर रोते हुए आ रही है और बहुत दंडवत प्रणाम करके पूछते हैं, कहीं मेरे कृष्ण को आपने देखा है? और जैसे ही वो राधा रानी कहती है, वो अपने ऐश्वर्य भाव को विष्णु जो है वो बना नहीं सकते, वो ये मेंटेन्ड इज फॉर्म फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत कोशिश करके वो अपने विष्णु बने हुए हैं, ब्रज के अंदर इतना माधुर्य है, इतना माधुर्य है कि वहाँ पर कोई ऐश्वर्य टिक नहीं सकता है, केवल प्रेम ही प्रेम है, यहाँ तक कि ब्रज के अंदर भगवान भगवान है ये भी किसको पता नहीं है, न यशोदा को पता है, न नंद महाराज को पता है, न गोपियों को पता है, न ग्वाल बालों को पता है, न कौओं को पता है, न मोरों को पता है, न गाय, न किसी को पता है, सब सोचते हैं कि मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, हमको खेलने वाला व्यक्ति है, यही सब सोचते हैं। भगवान खास रूप, खास द्वारका में, मथुरा में, अयोध्या में, सब जगह पर अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, और ऐश्वर्य भाव में रहते, द्वारकाधीश बन के रहते हैं, अयोध्या नाथ बन के रहते हैं, लेकिन जैसे ब्रज में प्रवेश करते हैं चप्पल तक उतार देते हैं अपनी, कोई ऐश्वर्य नहीं है उनके पास, ना कोई मुकुट है, ना कोई रत्नों की माला है, कुछ नहीं है उनके पास, वन की माला पहनते हैं, फॉरेस्ट फ्लावर्स, मोरों का पंख पहनते हैं, फेटा बांधते हैं, यहाँ पर भी गांठ बांधते हैं और डंडे लेके चलते हैं गौ चराने के लिए, ये वैश्यों का काम है ना, कोई राजा गाय चराता नहीं, ये तो विश्व के राजा हैं, लेकिन वहाँ पर ग्वाल बाल बनकर चल रहे हैं, हाँ, इसलिए वो कहते हैं ना, सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं कृष्ण भगवान की भी पूजा नहीं करता हूँ, मैं नंद महाराज की पूजा करता हूँ, क्यों, वो कितने महान हैं, अरे परब्रह्म परपुरुषोत्तम भगवान जो है उनके आंगन में बालक बनकर रेंग रहे हैं, उनको डांट रहे हैं वो, हाँ समय पर डांटते भी हैं, चोरी करने के बाद चोरी कर रहे हैं, उनके घर पर जाके नटखट खेल खेल रहे हैं, आनंद दे रहे हैं उनको बालक का, परब्रह्म परम भगवान सब सृष्टि का रचन करने वाले, तो ऐसे भगवान जो है उनके सामने खड़े हैं, तो माधुर्य का प्रभाव इतना है कि राधा रानी के मधुरता के प्रेम के प्रभाव से उनके दो जो भुजाएं हैं वो पिघल जाती हैं, वो टिका नहीं पाते अपने रूप को, चतुर्भुज को, उनका ऐश्वर्य जो है इनके प्रेम के प्रभाव से सब खत्म हो जाता है और वो उनके सामने कृष्ण के रूप प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो चतुर्भुज कृष्ण है, मतलब विष्णु है, वो स्वयं कृष्ण तो है ना, तो यही लीला है। वहाँ पर एक गाँव है, एक नाम है प्रविष्ट वन, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं पेठा गांव, तो पेठा गांव जो है यहीं पर भगवान ने प्रवेश किया था गिरिराज के अंदर, जबकि भगवान ने जब इंद्र ने वर्षा किया तो सब लोग व्याकुल हो गए ना, भाग भाग के गए कृष्ण के पास, कृष्ण कृष्ण महाभाव त्राही माम करके गए थे, तो वह सब लोगों ने, भगवान ने कहा कि चलो मेरे संग में, सबको लेके चलते हैं, और एक जगह जाकर वो गोवर्धन के बीच में है, बिल्कुल लंबी परिक्रमा में आता है 40 किलोमीटर की, हम लोग 22 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, लेकिन 40 किलोमीटर की परिक्रमा के अंदर एक गांव आता है पेठा गांव, उसके अंदर जमीन में भगवान घुसते हैं गुफा में, और जमीन के अंदर घुस के नीचे से गिरिराज को उठाते हैं सबके आंखों के सामने, तो ये गांव है वो, इसी गांव में ये विष्णु बनकर खड़े थे, तो इसी मंदिर के सामने जहाँ पर भगवान ने गुफा में घुसकर पर्वत को उठाया था, वहाँ पर अभी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर चतुर्भुज नारायण की मूर्ति है, लेकिन लिखा हुआ है ये नारायण नहीं है, स्वयं कृष्ण है। इस विष्णु की हम आराधना कर सकते हैं क्योंकि हमारे इष्ट देव कृष्ण है, और उसी मंदिर के सामने एक सरोवर है नारायण सरोवर, जिसमें कमल दल के अंदर हमारे कृष्ण भगवान जो है विष्णु मन के खड़े थे। तो यही स्थान जो है, यही लीला जो है वो हमारे अलालनाथ में प्रकट है, क्योंकि हर धाम में हर अलग धाम जो है प्रकट हो जाते हैं, मतलब वृंदावन धाम के अंदर मायापुर भी है, नवद्वीप भी है, और जगन्नाथपुरी भी है, और बाकी सारे धाम भी वहाँ पर आश्रय लिए हुए हैं, यहाँ तक कि श्री रामेश्वर और द्वारका और गया कुंड जो है, चार धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ, गंगा नदी, गंगोत्री जमुनोत्री, हाँ श्रीलंका रामेश्वर, ये सब हमने अभी मार्च में सब लोगों को दर्शन कराया था काम में, हाँ सब लोग आए थे कैंप में से हमारे, ये सब धाम भगवान प्रकट करते हैं ये दिखाने के लिए कि मेरा हर धाम परिपूर्ण है, आपको सब जगह भटकने की जरूरत नहीं है कि हमारा ये नहीं हुआ है, हमारा वो नहीं हुआ है, आप श्री वृंदावन धाम जाएंगे तो सारे धाम आपके दर्शन वहीं हो जाएंगे, और ये वृंदावन धाम मायापुर से और जगन्नाथपुर से बिल्कुल अभिन्न है, इसमें कई कम ज़्यादा नहीं है। केवल भाव जो है वृंदावन धाम का वो माधुर्य है, और जो भाव मायापुर का है वो औदार्य है, और यहाँ का भाव विरह का है, विप्रलम्ब भाव है। लेकिन प्राप्त करना वही चीज़ है जो तीनों धाम से प्राप्त करना। तो भगवान की दया से ये जगन्नाथपुर धाम जो है मायापुर में सीमांत द्वीप में राजापुर में प्रकट हुआ है, और वृंदावन धाम का जो प्रविष्ट वन है गोवर्धन धाम वो यहाँ पर अलारनाथ में ब्रह्मगिरी में प्रकट हुआ है। तो ये सब रहस्य जो है कि लीला कैसी वहाँ की और यहाँ की सेम है, ये ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने यहाँ पर प्रकट किया था। और सेम कैसी है यहाँ पर लीला कि यहाँ पर भी राधा रानी के भाव में कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर, यहाँ पर कृष्ण विराजमान है स्वयं जगन्नाथ जी के रूप में, हाँ है ना, हरे कृष्ण। तो साल भर वो 350-45 दिन दर्शन करते हैं भगवान का चैतन्य महाप्रभु, व्याकुल होकर राधा रानी के भाव से गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर पत्थर को पिघलाते हुए भाव विमर होकर रोज दर्शन करते हैं। लेकिन जब उनका स्नान होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, उनको बुखार आ जाता है, दर्शन बंद हो जाते हैं। तो राधा रानी की तरह जो रास में भगवान से छूट गया संग उनका, और कितनी व्याकुल हो गई वो, वैसे चैतन्य महाप्रभु व्याकुल हो गए और भगवान को ढूंढे वहाँ चले गए ब्रह्मगिरी, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने विष्णु पर ध्यान करके वहाँ पर ब्रह्मा जी के हाथ से बनी हुई मूर्ति नारायण की, नारायण ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि मेरी मूर्ति ऐसे ऐसे बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उस मूर्ति को बनाया और वहाँ पर स्थापन किया। तो वहाँ पर गए वो, वहाँ पर भी चतुर्भुज नारायण का दर्शन है, तो वहाँ पर वो वहाँ पर क्यों गए, लेकिन गए और जब दर्शन किया तो उसी चतुर्भुज नारायण ने उनको द्विभुज मुरली बजाने वाले मुरलीधर का दर्शन करवाया। हमको दिखाई पड़ते चार भुजा वाले, लेकिन महाप्रभु चैतन्य को दिखाई पड़े दो भुजा वाले मुरली बजाने वाले मुरलीधर। और जैसे ही उनकी मूर्ति से उनको ये दर्शन हुआ तो महाप्रभु जी भाव विभोर हो गए और वो दंडवत किया उन्होंने उसी पर पहाड़ पर। और जैसे वो भाव विभोर हो गए तो पत्थर पिघल गया, और देखा पूरा पत्थर है वो, महाप्रभु का लंबा शरीर जो है इसमें घुटने होंगे या ऊपर होंगे हमारे या एड़ियाँ होंगी, जो जो भी जमीन को लगता है जब दंडवत करते हैं साष्टांग दंडवत, तो सभी जगह पर वो जो उनका विरह का अग्नि और प्रेम का भाव था उससे वो पत्थर पिघल गया, सब गड्ढे वहाँ पर। ये लीला है वहाँ की, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बताया कि ये पेठा गांव जो है वहाँ पर प्रकट हो गया। और वो जब ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी वहाँ पर गए शौच करने गए थे, लेकिन वहाँ उनको कृष्ण का दर्शन हुआ और वो बेहोश होकर उसी झाड़ियों में गिरे पड़े थे। बहुत देर हुए भक्त लोग ढूंढने चले गए उनको, और उनको बेहोश अवस्था में मिले। तब जागरूक हुए तब उन्होंने कहा कि ये गांव जो है ये गोवर्धन का स्थान है, ब्रह्मगिरी गोवर्धन से अभिन्न है, और इसके सामने ये जो सरोवर है ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, और ये गिरी गोवर्धन है, और ये पेठा गांव है, ऐसा उन्होंने बताया। तो आचार्यों के माध्यम से ही हम धाम की महिमा समझ सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम भी अपने आप धाम में आ सकते हैं, अकेले के घूमने के लिए आ सकते हैं, परिवार को लेकर हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, हाँ कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या पर क्या हुआ है और क्या क्या हुआ है। चलो बहुत बड़ा मंदिर कौन सा है, अरे वो मंदिर में जाओ, वो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर रहती है, वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ चले जाते हैं। बाहरी दृष्टि से जो हमको आकर्षण लगता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर ज़्यादा बड़ा मंदिर साइज़ का है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पर पंडाओं को बड़ी बड़ी दक्षिणा देनी पड़ती है अंदर जाने के लिए, वो तो बड़ा मंदिर है, वहाँ पर हमको जाना ही चाहिए। उधर मंगला में 5,000 लोग रहते हैं, अरे ये बहुत बड़ा मंदिर है ऐसा लगता है हमको। लेकिन कई ऐसे स्थान हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है। क्या कारण है उसका? क्योंकि जो अंतरंग स्थान है भगवान के, वो भगवान सबके लिए प्रकाशित नहीं करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी कृपा प्राप्त जो भक्त होते हैं उनको ये रहस्य पता होता है, इसलिए जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है वहाँ पर वो शुद्ध भक्त पहुँच जाते हैं। वृंदावन में जाएंगे तो सब लोग बांकी बिहारी मंदिर में जाएंगे, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर, कभी भी साल में कभी भी जाओ। लेकिन जो मदन टेर है जहाँ पर भगवान ने मदन को बाण मारा था, मदन ने भगवान को बाण मारने का प्रयास किया था और मदन स्वयं पिघल गए थे, वहाँ पर कोई पहुँचता नहीं। हाँ तो वहाँ पर एक विवल कुंड है बरसाने में, वहाँ पर विवल होकर दोनों को अश्रु भरे थे, वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता। दो मिल वन है वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है। ऊंचा गांव में कोई ज़्यादा कोई पहुँचता नहीं है। सखियों का गांव है जहाँ पर आप फिसल गए थे, सुदेवी सखी का, वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है। बठेन में, छोटी बठेन बड़ी बठेन में भगवान के चरण चिन्ह है, वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता। काम में वन में भगवान के चरण पहाड़ी है जहाँ पर भगवान ने बंसुरी बजाई थी, पत्थर पिघल के चरण चिन्ह उत्पन्न हुए थे, वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग पहुँचते नहीं है। उसी तरह से कल हम गए थे अलारनाथ में, वो पुजारी मुझे बता रहे थे कि जगन्नाथ जी में और अलारनाथ में कोई अंतर नहीं है, सेम भगवान है। उसी जगन्नाथ को मुरली बजाते हुए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर दर्शन किया ना, हमको ऐसे दिख रहे हैं, वो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन गरुड़ स्तंभ के पीछे से जब प्रेम भाव से चैतन्य महाप्रभु उनको देख रहे हैं तो उनको मुरली बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो, और वही भगवान है वहाँ पर अलारनाथ में, उन्होंने वही दर्शन उनको दिया है, तो वही है वो, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अनंत लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। और एक जगह है गुंडीचा मंदिर, उसका नाम क्या है, गुप्त वृंदावन, वहाँ पर भगवान की गुप्त लीलाएँ होती है साल में 7 दिन रथ यात्रा के बाद। तो ये सब स्थान जो है ठाकुर भक्तों ने जो भजन में लिखते हैं, से सब स्थाने हेरे वो आमी प्रणयी भक्ति संगे, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसे आपके लीलाओं के अंतरंग स्थान जो है वो मैं आपके प्रणयी भक्त मतलब प्रेमी भक्त जो है उनके संग में देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रणयी भक्त के संग में देखने से उनकी कृपा से उस धाम का दर्शन होता है, वो धाम हमारे लिए प्रकट होता है। धाम केवल टिकट निकालने से, रूम बुकिंग करने से और रहने का व्यवस्था करने से प्रकट नहीं होता है, धाम जो है शुद्ध भक्त की कृपा से वो रहस्य को वो प्रकट करते हैं हमारे लिए, तब धाम की महिमा हम समझ सकते हैं। और एक धाम की महिमा समझने का आसान तरीका है कि धाम में जाके हमको भजन करना चाहिए। समझो एक कोई स्थान है, कुछ लीला वहाँ पर हुई है, अगर वो लीला आपके हृदय में अगर छूनी है तो आपके जाकर उस जगह भजन करना पड़ेगा। आपको भी अनुभव आया होगा, जिस जगह पर आप पूरे जागरूक थे और पूर्णता भगवान की भावना में थे, प्रार्थना के भाव में थे, उस जगह आपको सबसे अधिक आनंद आया होगा। हाँ, इट्स वेरी सिंपल प्रिंसिपल, जब आपके आत्मा के दरवाजे खुले हुए हैं भावना के आधार पर, तब धाम अपने आप को प्रकट करता है। और अगर आप उस जगह पर जाकर कोई पाप करते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई दारू पीते हैं, कोई और कुछ काम गलत करते हैं, लोगों को चीटिंग करते हैं, तो वो धाम जो है अपनी लीलाओं को ढक लेता है, क्योंकि धाम भी व्यक्ति है। मैंने आपको बताया भगवान का धाम, भगवान में कोई अंतर नहीं है, स्वयं व्यक्ति है वो, तो वो धाम जो है वो अपनी लीलाओं को कवर कर लेता है, गुप्त कर लेता है, और हमको उसका कोई भी फर्क नहीं होता है अगर हमारा भाव सही नहीं है। ये बात हमने परम पूज्य रमेश बाबा जी से सुनी थी, उन्होंने कहा कि जिस धाम के जिस जगह पर संत लोग बैठकर भजन करते हैं वो वहाँ पर आपको धाम का सबसे अधिक अनुभव प्राप्त होता है, वाइब्रेशंस आर फेल्ट मोर इंटेंसली ओवर देयर। इसी तरह से हमारा यात्रा का यही उद्देश्य है, हम चाहे 50 जगह पर दर्शन नहीं कर सके लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस जगह पर जाएंगे उस जगह को ऐसे ग्रहण करेंगे कि हृदय में बिठाकर अपने घर ले जाएंगे। आपको घर में बैठे बैठे स्नान करते हुए बैठते हुए बात करते हुए याद आना चाहिए, अरे हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ पर ये लीला हुई थी, तब आपकी धाम की यात्रा सफल हो जाती है। 50 जगह पर मंथा टेकने के बाद में तो शाम को बैठेंगे आपको याद नहीं आएगा कहाँ कहाँ मंथा टेका, किसकी जगह पर गए थे, कौन सा मंदिर था, वो कौन सा मंदिर था, वो नाम क्या था उसका, वो कौन से गले में था, वो ना पर ब्लू पेंट किया था, वो हरा पेंट का, वो कौन सा मंदिर था, ऐसे बोलते रहेंगे। यहाँ से जाएंगे रास्ते पे तो जो हरी लाइट का बिल्डिंग है वो पैराडाइज होटल है ऐसे बोलेंगे, इतना याद आएगा बस, आगे कुछ याद नहीं आएगा। धाम वो ऐसे भारी रूप से प्रकट नहीं होता है, धाम प्रकट होता है हृदय के भाव से, शुद्ध भक्त की कृपा से वो रहस्य जो है हमारे लिए खुल जाता है। तो हम लोग उस रहस्य को समझने को आए कि धाम क्या वस्तु है और धाम क्या कर सकता है। धाम जो है पतित से पतित जीव को भी शुद्ध भक्त बना सकता है, ये धाम की महिमा है। यहाँ पर तो ऐसा लीला है कि अनजाने में भी आदमी यहाँ पर आएगा, इस धाम में स्पर्श करेगा, पहली बार ट्रेन से या प्लेन से या बस से उतरते ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे उसी समय। अगर अनजाने में इतना सब लाभ हो सकता है तो अगर आप जानते हुए यहाँ पर आएंगे, अनुभूति के साथ में आएंगे, भाव के साथ में आएंगे, तो क्या लाभ होगा आपका। इसी जन्म में इसी क्षण आपकी आत्मा मुक्त हो सकती है और जीवन मुक्त अवस्था में शरीर में आप रह सकते हो पूर्ण अनुभूति के साथ, फुल्ली रियलाइज कंडीशन। तो हमको वैसी यात्रा करने की इच्छा है। वी डोंट वॉन्ट टू टेक यू टू मेनी प्लेसेस वेर वी जस्ट से यहाँ अंगूठा लगाओ, यहाँ पैसा रखो, यहाँ पाँव रखो, यहाँ पर एक हुआ था बस खत्म, आगे चलो, दिन में बहुत सारी जगह देखना है, जल्दी जल्दी करो। बेटर टू गो टू वन प्लेस, स्टे देयर, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, डू संकीर्तन, हियर द होली नेम, हियर द हरि कथा ऑफ दैट प्लेस, प्रे, ऑफर प्रेयर्स इन दैट प्लेस, तब जाकर आपको धाम जो है आपके लिए प्रकट होगा। तो वैसे ही कल का स्थान था, मुझे वहाँ पर बहुत कुछ कहना था लेकिन जब हमारी शरीर की अवस्था थकी हुई रहती है तो कैसे हम लोग ग्रहण कर सकते, इसलिए हमने उस जगह पर फोर्स नहीं किया सबको, लेकिन ये बहुत आपको बताने की हमारी इच्छा थी। तो इस तरह से ठाकुर भक्ति सिद्धांत की कृपा से अलारनाथ धाम का जो गौरव है, महिमा जो है, वो हमारे लिए प्रकट हुआ है। हम ठाकुर जी के बहुत ऋणी हैं, भक्ति सिद्धांत जी के। और सबसे बड़ी कृपा हम पर हमारी क्या है कि प्रभुपाद जी जब जवान थे, हमारे गुरु महाराज यहाँ पर जिनका फोटो रखा है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उस समय वो अभयचरण मोहन डे उनका नाम था, बंगाली थे, युवा अवस्था में थे, कॉलेज में पढ़ते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी के साथ में सत्याग्रह के में वो सहभागी थे, उसके वो फ्रीडम फाइटर विद गांधी जी, डिग्री को भी त्याग कर देते, उन्होंने खादी के वस्त्र पहनते थे, जो भी गांधी जी का तत्व था वो सबको फॉलो करते थे, बड़े प्रभावित थे गांधी जी से। उस अवस्था में 22 साल की उम्र में इनके एक मित्र कहते हैं नरेंद्र दत्त जो है, चलो आज एक महान महात्मा आए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी जो बचपन में थे, उनके पिताजी गौर मोहन डे बड़े भक्त थे भगवान के, वो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। रोज सवेरे मैं उनकी घंटी की आवाज़ सुनकर, आरती करते हुए घंटी की आवाज़ सुनकर मैं बिस्तर से उठा करता था और बिस्तर में ही ऐसे बैठकर उनकी पूरी आरती में देखा करता था। दिस वॉज माई बिगिनिंग ऑफ द डे, एवरी सिंगल डे, ऑल थ्रू आउट माई चाइल्डहुड। ऐसे ही उनके संपूर्ण संस्कार हुए, हमें भी अपने बालकों पर यह संस्कार करना चाहिए। हमारे घर में ऐसा कृष्ण भावना में वातावरण होना चाहिए कि हमारा बालक सोते हुए जागते हुए उसी वातावरण के प्रभाव में रहना चाहिए। उनको जप करने को सिखाना चाहिए, हर एक पिता का माता का कर्तव्य है, ये केवल जन्म देना हमारा कर्तव्य नहीं है। हर जीव को जन्म देने के पश्चात शरीर का लालन पालन करने के साथ साथ भगवान के भक्ति देना हर गृहस्थ का कर्तव्य है। अगर हम लोग वो नहीं कर पाते हैं तो हम लोग अपने गृहस्थ कर्तव्य में चूक गए और अपूर्ण हो गए, उसका परिणाम भी हमारे पर होगा उस अपराध। इसलिए हर संतान को हमारे भगवान की भक्ति देना हमारा परम कर्तव्य है। पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, न माता होने का हमको अधिकार है, न पिता होने का अधिकार है, न राजा बनने का अधिकार है, ना गुरु बनकर शिष्य रहने का अधिकार है। अगर हम हमारे ऊपर निर्भर जो व्यक्ति है, गुरु के ऊपर शिष्य है, माता पिता के ऊपर पुत्र है और राजा के ऊपर प्रजा है, हम पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को अगर हम कृष्ण भावना नहीं दे सकते हैं तो हमको ना राजा बनने का अधिकार है, ना पिता बनने का, ना माता बनने का, ना गुरु बनने का अधिकार। कुत्ता बिल्ली भी माता पिता बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। हम मनुष्य तब बन जाते हैं जब हमारी संतान को हम कृष्ण भावना देते हैं। तो प्रभुपाद जी बचपन से अपने घर में भक्ति सीखते थे। उनके घर में हर रोज़ प्रभुपाद के पिताजी दोपहर के समय भोजन बनने के पश्चात घर के बाहर जाकर आवाज़ देते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, शास्त्र का प्रमाण है। हर गृहस्थ को रोज़ लंच के समय अपना खाना खाने के पहले घर जाकर 3 बार आवाज़ देनी होती है, एनी बड़ी हंगरी, नो आंसर इज देयर, देन यू कैन टेक योर मील। तो उनके घर में हर रोज़ साधु लोग आया करते थे और हर रोज़ उनको भोजन किया करते थे, 5, 6, 2, 4 जो भी है उनको भोजन करा के उसके पश्चात वो खुद भोजन करते थे। तो वो कहते हैं कि अरे मैंने बहुत साधुओं को देखा है, बहुत लोग हिंदू भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं और महान भी होते हैं, सबको मैंने देखा हुआ है, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं इनके अंदर। लेकिन नरेंद्र जी कहते हैं नहीं नहीं, ये विशेष व्यक्ति है, वे उनमें से नहीं है, एक बार मिल तो लो कम से कम। नहीं नहीं हाँ हाँ, नहीं 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 हाँ, आखिर में नरेंद्र भाई जो है उनको पकड़ के लेके जाते, कम से कम देख के आ जाओ, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी के ये राष्ट्र के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत उनका प्रभाव था उनके मन में। और किसी के घर पे छत पर उनका कार्यक्रम था ठाकुर जी का और वो प्रवचन कर रहे थे, बीच प्रवचन में जैसा भी कुछ लोग आ रहे हैं, वैसे बीच प्रवचन में वो आते हैं और दंडवत करते हैं, क्योंकि सत्संग में जाते हैं हम पहले ही सत्संग की जगह पर दंडवत करते हैं, सत्संग कहने वालों को, सत्संग सुनने वालों को, जगह को दंडवत करते ही, दंडवत करके अभी उठ ही रहे हैं तो बीच प्रवचन में भक्ति सिद्धांत जी उनको बोलते हैं यू आर अ लर्नेड इंग्लिश स्पीकिंग मैन, वाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ भक्ति इन वेस्टर्न वर्ल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ना पहचान है, ना ज्ञान है, ना कुछ नहीं, कोई संपर्क नहीं उनका, लाइफ टाइम मिशन का ऑर्डर दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी दंग हो गए, हाउ इज गिविंग मी इंस्ट्रक्शन लाइक दिस, ना मैं उनका शिष्य हूँ, ना उनका कोई रिश्ता है, ना मेरी पहचान है, और मेरे लाइफ टाइम मिशन का आदेश दे रहे हो, तो उनसे वाद विवाद करते हो। मैं कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, मैं तो अभी बालक हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे उनका मैरिज हुआ था उस समय, छोटा सा पहला बालक घर में हुआ था, वो कि फिर भी वो वाद विवाद क्या करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप कह रहे हैं, भारत परतंत्र है, ब्रिटिश लोगों के अधीन है, उनकी तरफ से हमारे जनता पर अत्याचार हो रहा है, हमारे संस्कृति का हनन हो रहा है, तो भारत को परतंत्र से मुक्त करना पहला कर्तव्य हमारा, इस समय ये इम्पोर्टेंट नहीं जो आप कह रहे हैं। तो भक्ति सुधान जी कहते हैं कि अब भारत पर अंग्रेजों का राज है, उसके पहले मुसलमानों का राज था, उसके पहले पुर्तगीज भी आए थे, उसके पहले ये भी आए थे, उसके पहले वो भी आए थे, सब तरफ से सब दिशाओं से भारत की संस्कृति पर हमला किया गया है। हाँ, हमारा खून खौल उठता है सुनकर, हर तरफ से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सब जगह से भारत की संस्कृति पर हमला किया गया है। तो ये जो तंत्र है भारत के ऊपर का, ये हर जगह बदली होता जाता है, कल तुम्हारा राज्य आएगा। लेकिन इन सारे समय पर जब मुसलमान का राज्य था, ब्रिटिश का परतंत्र था, मुसलमानों का था, पुर्तगीज लोगों का था, इस हिस्से पर और किसी का था, हर समय पर लोग मर रहे थे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से। तो व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम? बिगर प्रॉब्लम इज नॉट हु इज रूलिंग यू, विच कंट्री यू आर स्टेइंग, बिगर प्रॉब्लम इज दैट यू आर डाइंग एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ। तो इसलिए जो भगवान की भक्ति का आंदोलन है, भगवान के नाम का प्रचार है, वो किसी के तंत्र को बदलने के लिए वेट नहीं कर सकता है। इट इज वी कैनॉट वेट फॉर द रूल टू चेंज टू स्टार्ट भक्ति। हम कैसे बोलते हैं, अरे अभी थोड़ी भक्ति करने के दिन है, वो तो पैसे कमाने के हंसने खेलने के दिन है, सब कुछ कमा के बैठो आराम से फिर भक्ति करो। मतलब लेट द राइट टाइम कम व्हेन आई विल बी रिटायरिंग, व्हेन आई हैव इनफ मनी, एवरीथिंग इज ऑल राइट, माय चिल्ड्रन आर वेल सेटल्ड एंड एवरीथिंग ऑल राइट, देन आई विल डू भक्ति। बट माय डियर सर, जब ये सब आप करेंगे तो करते करते इतने थक जाएंगे कि आपको जो जॉइंट पेन्स होंगे, डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, बीमारी कितनी लग जाएगी, फिर वो जो थर्ड क्लास लाइफ है आपका बीमारियों से भरा हुआ, तब आप भगवान की भक्ति आरंभ करेंगे। मतलब द बेस्ट ऑफ लाइफ यू वांट टू गिव टू योरसेल्फ एंड द वर्स्ट ऑफ लाइफ यू वांट टू गिव टू गॉड, वेल द गॉड हैज गिवन एवरीथिंग टू यू। जिस भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आपकी जवानी, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, आपकी कुशलता, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी डिग्री, आपका शरीर, आपका सौंदर्य, सब कुछ दिया है, और वो सब कुछ आपने अपनी सेवा में लगाया, और उसमें से जो बचा कुचा जो है ना, वो सड़ा हुआ माल जो है, वो हम आपको अर्पण करेंगे बूढ़ी अवस्था में, सर्वस्व त्याग करेंगे, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया ओढ़े तुम्हारे घरे, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो उस समय ठाकुर भक्त सिद्धांत जी ने उनको कन्विंस किया और डिफीट किया कि आप जो कह रहे हैं वो शरीर का शास्त्र है, परतंत्र और अपना तंत्र जो है ये शरीर के ऊपर आधारित है। हम भारतीय क्यों हैं? क्योंकि हमारा भारत में जन्म हुआ है। और कोई अमेरिकन क्यों है? क्योंकि उनका अमेरिका में जन्म हुआ है। अगले जन्म में भारतीय बन सकते हैं आप, या तो भारतीय लोग अमेरिकन बन सकते हैं। तो ये बदलने वाली वस्तु है, चिरंतन वस्तु ये है कि हम आत्मा है, और आत्मा का भगवान के साथ संबंध होना जरूरी है, चाहे वो अमेरिकन हुआ, स्पेनिश हुआ, इंग्लैंड हुआ, या अमेरिकन या इंडियन हुआ। इट इज नेसेसरी फॉर द सोल टू कनेक्ट विद गॉड इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ, जवान बुढ़ा या अमेरिकन भारतीय, किसी भी अवस्था में हमको भगवान के साथ संबंध जोड़ना आवश्यक है, और वो अर्जेंसी है। भारत परतंत्र से मुक्त होने से ज़्यादा अर्जेंसी है आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने की। हो सकता है भारत परतंत्र से मुक्त होने के पहले आप मर जाओगे तो क्या होगा? कि तब ना भारत रहेगा, ना अमेरिका रहेगा, ना पाकिस्तान रहेगा। दर आर टेम्पररी डेजिग्नेशंस, वी आर नॉट इंडियंस, पाकिस्तान अमेरिकन्स, वी आर नॉट ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। क्या बोलते चैतन्य महाप्रभु? उस श्लोक मुझे पूरा याद नहीं, आपको याद है? ना हम विप्रो न च नरपतिर, हाँ, न वैश्यो न शूद्रो, हाँ, गोपी भरतुर पद कमल योर दास दास अनुदास। मेरी क्या पहचान है? ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, वानप्रस्थ हूँ। मैं केवल गोपियों के नाथ के दासों का दास हूँ। गोपी भरतुर मतलब गोपी के भरता, कृष्ण भगवान, गोपी भरतुर पद कमल योर, उनके चरणों के दास दास अनुदास, यही मेरी पहचान है। और इस पहचान के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उनसे कनेक्शन पैदा करना। तो इस बात पर प्रभुपाद जी डिफीट हो गए, मन के अंदर ही उन्होंने इस व्यक्ति को गुरु के रूप में उस समय स्वीकार कर दिया कि ये मेरे गुरु हैं, दैट्स ऑल, आई एम वेरी ऑनर्ड टू टेक हिम एज माई गुरु। लेकिन दीक्षा उन्होंने 11 साल बाद में लिया, 1922 में ही घटना हुई, 1933 में उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के समय पर भी उन्होंने यही उनको आदेश दिया, यू आर अ लर्नेड मैन, प्लीज प्रीच दिस गॉस्पेल टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर वही आदेश, तो फिर सोच रहे हैं, अरे मेरा तो परिवार है, मेरा पेशा है, बिजनेस है, हाउ डू आई डू ऑल दिस थिंग्स। बट गुरु जी की आज्ञा है तो इच्छा थी मन में, करना है, करना है मुझे, करना है। कुछ साल बीत गए, बड़े बच्चे, बड़े हो गए बच्चे। 36 साल में भक्ति सिद्धांत जी का शरीर छूट गया, अंतर्धान हो गए। तो उस समय के बाद में उन्होंने प्रभुपाद जी को खत लिखा था जाने के पहले, उसमें भी उन्होंने यही लिखा था, प्लीज़ गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच दिस मैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज थर्ड टाइम। कुछ समय बाद में बच्चे बड़े हो गए तो स्वप्न आया उनको, और स्वप्न में फिर से एक बार आए, व्हाई डोंट टेक संन्यास एंड डेडिकेट योर लाइफ फॉर दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु फोर्थ टाइम। और जब उन्होंने घर छोड़ा तो दोबारा एक बार स्वप्न में आए, प्लीज़ नाउ ट्रैवल टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। इमेजिन कितनी कृपा है। तो इनकी कृपा से ही हम तुम लोग आज यहाँ पर बैठे। कैसे? इन्होंने उनको कन्विंस किया, फिर उन्हें घर बार छोड़ के संन्यास लिया। आखिर में रूप गोस्वामी महाराज, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो हैं, उनकी समाधि है उधर वृंदावन में। समाधि से रूप गोस्वामी प्रकट हुए प्रभुपाद जी के सामने, उनको आदेश दिया, नाउ यू आर रेडी टू गो, प्लीज़ लीव। अतः वो वृंदावन से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई गए, फिर कलकत्ता गए, और यहाँ पर मुंबई आए, बोट में बैठकर अमेरिका चले गए। और वहाँ जाकर एक साल तक तड़पे वो, ना घर रहे धरने का, ना कोई होटल है, ना कोई रूम है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं ठीक से, यहाँ से वहाँ बदली कर रहे जगह अपनी, झोपड़ी में रहे जहाँ पर नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, व्यभिचारी, पुरुष पुरुष संबंध करने वाले, स्त्री से संबंध करने वाले, ऐसे भयंकर लोगों के साथ में वो रहे, ऐसे ज़मीन पर सब पड़े हुए नशा करके बेहोश अवस्था में, उसमें सन्यासी रह रहा है, गेहूँ में वस्त्र पहन के उनके से बीच में जा रहा है और प्रचार कर रहा है श्रीमद् भागवत को लेकर। फिर जब यश प्राप्त हुआ, अपने हाथ से खाना बनाते थे, अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स शराब के नशे में व्यभिचार करते हुए उनके पास शाम को आते थे, कोई कल्चर नहीं है, अपने हाथ से खाना बनाते थे। 70 साल का मनुष्य ये व्यक्ति खाना बना रहा है, उनको परोस रहे हैं, और वो कैसे कुछ खा रहे, कुछ छोड़ के वही प्लेट रख के जा रहे, उनको गेट तक विदा करते थे भागवत की कथा सुनाने के बाद में। फिर आते थे, सबली जूठी प्लेट को उठाते थे, उसका कचरा साफ करते थे, प्लेट को धोते थे, फिर हाथ धोकर किचन में जाकर जो बर्तन में खाना बनाया उसको धोते थे, साफ करके सोते थे, फिर सुबह उठते थे। मैं उस जगह पर गया हूँ न्यूयॉर्क में, 26 सेकंड एवेन्यू, पेट्रोल पंप के बाजू में उनका कमरा था, रोड पर ऐसा शॉप की दुकान था। दिन में उठकर फिर अमेरिका के दुकान में जाके भिक्षा करते थे, पैसे मांगते थे, और उसी पैसे से सब्जियां खरीद के शाम को वापस खाना बनाते थे और फिर प्रवचन करते थे। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत लोगों को आना आरंभ हो गया वहाँ पर। उधर एक गार्डन है, उसका नाम है टॉमकिन स्क्वेयर पार्क। उधर एक पेड़ है बड़ा, बहुत सुंदर पेड़ है, उसका नाम लिखा है उस पर, हरे कृष्णा ट्री। न्यूयॉर्क के म्यूनसिपालिटी ने, मेयर ने वहाँ पर ऑफिशियली बोर्ड लगाया है, हरे कृष्णा ट्री, अंडर दिस ट्री द फाउंडर ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट सैट इन 1965 एंड डिड हीज फेमस वर्ल्ड वाइड फेमस चैंट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा लिखा है बोर्ड वहाँ पर पूरा। और ये ट्री कौन से टाइप का है, जाति का है, और ऐसे कितने ट्री इस गार्डन में, सब वहाँ पर वर्णन किया है। और ये ट्री के अंडर स्वामी प्रभुपाद द फेमस फाउंडर ऑफ हरे कृष्ण मूवमेंट सैट डाउन हियर एंड चैंटेड द हरे कृष्ण मंत्र। कैसे? डब्बा लेकर, ढक्कन वाला डब्बा लेकर दोनों तरफ से बजाते थे और हरे कृष्ण मंत्र गाते थे। फिर वहाँ से ये बावरी जो थोड़ा जगह था वो पास में है, तो जो आने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा कि क्या हम आपके साथ रह सकते हैं, क्या कैन वी स्टे विथ यू, ऐसा उन्होंने पूछा। तो कई दिन से खाना खा रहे हैं उनके पास में, कई दिन से कथा सुन रहे हैं, तो या यू कैन स्टे विथ मी, एक दो चार ऐसे साथ में रहने लगे। फिर उनको उन्होंने कभी खाना बनाने को सिखाया, सब्जी काटने को सिखाया, कैसे साफ करते हैं, कैसे जब करते हैं। तो बाद में पूछा कैन वी शेव लाइक यू, तो प्रभुपाद जी अपने हाथ से उनके बाल मंडवाए, सर मंडवाया, छोटी रखी उनको, गांठ बना के, लंबे लंबे बाल थे ही उनके, रेडीमेड छोटी थी उनकी, हाँ लॉन्ग हेयर ना, और सब अमेरिकन हिप्पीज, तो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ न्यू ग्रोइंग छोटी, ऑलरेडी ग्रोन छोटी इज देयर। तो अपने हाथ से उनको धोती पहनाना सिखाया, अपने हाथ से उनको सर मुंडवाया, तिलक लगाने को सिखाया, भगवान को भोग लगाने को सिखाया, कीर्तन में लेके जाने लगे गार्डन के अंदर, नाच करने को सिखाया, सब कुछ सिखाया। मुझे अभी तक पता नहीं चला, अभी तक मुझे ये मालूम नहीं पड़ा है कि उन्होंने औरतों को साड़ी पहनना कैसे सिखाया। आई हर्ड दैट ही ओनली टॉट देम बट एग्जैक्टली हाउ ही टॉट देम आई डोंट नो बिकॉज सम टाइम एट सम मोमेंट ही मस्ट हैव टोल्ड लेडीज टू वेयर साड़ी ना एंड हाउ टू वेयर ऑल्सो ही मस्ट हैव शोन सन्यासी है इमेजिन सन्यासी जो है वो स्त्री की ओर देखते भी नहीं है ऐसे सन्यासी दयालु सन्यासी ने कैसे सिखाया होगा उनको आप देखते ना हम इतने वो क्या कहते हैं अपने भारत की संस्कृति को पालन नहीं करते हैं लेकिन वेस्टर्न जो लड़के औरतें यहाँ पर आती है सब जगह पर ऐसे पल्लू लेकर तिलक लगाकर सब जगह पर पूरा शरीर को ढक के दर्शन करने के मंदिर में आते हैं हाँ फिर अशेम्ड व्हेन वी सी देम हमारी संस्कृति है लेकिन प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त थे कि अपने शुद्धि के प्रभाव से अपने भक्ति के और करुणा के प्रभाव से उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया जो हमको भी आज शर्मिंदा करते अपने तौर तरीके से इसलिए हम ठाकुर भक्ति सुदान जी के बहुत ऋणी हैं और अपना धन्यवाद अदा करने के लिए यहाँ पर आए थैंक यू वेरी मच क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके अंग्रेज़ों को भक्त बनाया फिर वो अंग्रेज़ों ने संन्यास लिया फिर भारतवर्ष में आए उन्होंने हमको प्रचार किया हमने इसको अपनाया और हम आपके संपर्क में आए और हम जगन्नाथपुरी वृंदावन नासिक वृंदावन सब जगह डोल रहे हैं ये इनकी कृपा है एनीवेज इनकी लीलाएँ बहुत अनंत है कुछ कुछ बातें हम आपको बताएंगे इनके कुछ फेमस वाक्य हैं जैसे एक वाक्य उनका ऐसा है दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लिव क्योंकि ये दुनिया जो है दुखालयम अशाश्वतम इसमें केवल दुख है और ये शाश्वत भी नहीं है कभी हम हैं कभी नहीं हैं हम अभी आज जवान हैं तो कल बूढ़े हो जाएंगे आज धनवान हैं तो कल गरीब हो जाएंगे आज सुंदर है तो कल कुरूप हो जाएंगे कुछ रोग हो जाएगा तो कुरूप हो जाएंगे हाँ कुछ निश्चित नहीं यहाँ पर और साथ साथ में लोगों का बर्ताव जो यहाँ पर है वो बहुत तकलीफ वाला है थोड़ा बहुत आपने कल अनुभव किया होगा ना हाँ तो इस विश्व में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग इसलिए वो कहते हैं जेंटलमैन इज दैट पर्सन इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड जो भगवान का भक्त है वही सभ्य गृहस्थ है और उसके लिए जब वो भगवान की भक्ति को जागृत करता है उसका स्वभाव ही बदलता है तब उसको इस विश्व में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द वर्ल्ड तो कुछ लोग बोलेंगे अरे भक्त बनना ही नहीं बनना ही अच्छा है इट बिकम डिफिकल्ट फॉर टू स्टे इन द वर्ल्ड हियर वी आर नॉट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड यीशु ग्रस्त कहते हैं बाइबल में दैट इफ यू आर माई डिवोटी यू विल गेट एक्यूजिशंस यू विल गेट प्रोसिक्यूटेड एंड इफ यू डू नॉट गेट प्रोसिक्यूटेड यू आर नॉट माई डिवोटी क्योंकि जेल के अंदर सब लोग कैदी रहते हैं ना वहाँ पर अगर आप कैदी की भावना में रहेंगे तो सब लोग के साथ अच्छे रहेंगे आप लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है तो सब लोग आपको परेशान करेंगे यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ जेल ऑल द प्रिजनर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम दैट विल हरास यू फॉर दैट स्टे विद अस डोंट थिंक यूर टू ग्रेट टू गेट आउट ऑफ जेल इस तरह से यीशु क्रिस्त ने भी बताया है सो वी शुड ऑल बिकम जेंटलमैन विदाउट फियर दैट विल हैव डिफिकल्टी इन द वर्ल्ड बिकॉज वेन यू बिकम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड यू गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड टू बिकम फियरलेस ये ऐसे ही फियरलेस थे इनके सामने कोई मायावादी टिकता नहीं था इनका टाइटल था सिंह गुरु वो सिंह की तरह प्रचार करते थे और जो मायावादी थे जो भगवान को व्यक्ति नहीं मानते शक्ति मानते हैं वो सब उनको देख के भागते थे दे वुड रन अवे नो वाद विवाद नो डिस्कशन नो कॉम्पिटिशन वेन ही कम्स दे वुड रन अवे ऐसे उनके कई फेमस लेक्चर्स भी है एक उन्होंने कथा किया था वैष्णव एंड ब्राह्मण में क्या अंतर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड वैष्णव ब्राह्मण जो है शास्त्र पढ़ाता है तो नियमों का पालन करता है भगवान की पूजा करता है लेकिन जो वैष्णव जो है वो समय आने पर ब्राह्मण का कार्य भी कर सकता है शासन भी कर सकता है क्षत्रिय की तरह व्यवहार भी कर सकता है वैश्य की तरह और झाड़ू मार सकता है शूद्र की तरह ही डज द नीडफुल ही इज नॉट अटैच टू द पोजिशन ऑफ ब्राह्मण ऑल्सो तो वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं तो समय लगने पर संडा साफ कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और कथा भी कर सकते हैं एज पर द नीड टू सर्व कृष्णा दे विल डू द नीडफुल इस तरह से उन्होंने बहुत एक फेमस उनका प्रवचन है जो किताब के रूप में उपलब्ध है द फेमस फिलोसफी विच ही प्रीच्ड इस तरह से ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने बहुत सुंदर कार्य किया है और उन्होंने भारत भर में 64 गौड़ीय मठ स्थापन किए भगवत नाम के प्रचार के लिए और वो कहते थे इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स जानते हैं कोई भी आंदोलन जो है कोई भी क्रांति होनी है तो ग्रंथों के माध्यम से होती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ग्रंथ लिखे और फिर वो गए वहाँ पर, और अपना आंदोलन शुरू करने के बाद भी वो ग्रंथ लेखन जारी रखा उन्होंने, ये कैप्ट ऑन, क्योंकि आदमी मर जाएगा लेकिन उसके द्वारा लिखा गया किताब जो है वो जीवित रहेगा। उन्होंने और एक वाक्य कहा है इन्होंने, उसका वो पुरानी इंग्लिश में है, वो ब्रिटिश इंग्लिश में, उसका अर्थ ये है कि अगर कोई सोचता है कि वैष्णव मर जाता है तो वो गलत सोचता है, क्योंकि वैष्णव कभी मरते नहीं है, वो अपने उपदेश और ग्रंथों के माध्यम से सदैव जीवित रहते हैं। ऐसा उन्होंने ठाकुर हरिदास के समाधि के ऊपर लिखा है पीछे, द वैष्णवस डू नॉट डाई, दे डाई टू लिव टू ऑलवेज प्रीच द मैसेज ऑफ गॉड हेड। इस प्रकार से ये जो उनके बारे में जो ग्रंथ हैं वो तो हजारों साल रहेंगे, मतलब वो नहीं होने पर भी उनका संदेश और विचार और उनकी जो प्रीचिंग्स है वो सबके लिए उपलब्ध है। इसका मतलब मरने के बाद भी वो हमारे लिए जीवित हैं, अपने उपदेशों के माध्यम से हमको प्रेरणा दे रहे हैं। तो संत लोगों के मरने से कुछ नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, एक दृष्टि से देखा जाए तो नुकसान तो होता ज़रूर है भावना से कि हम उनको संग छूट रहे हैं हमारा, लेकिन उनके उपदेश जो है वो उनके किताबों ग्रंथों के माध्यम से जीवित रहते हैं, और वो जन्म जन्मांतर के बाद भी हमें उनका संग देते रहते उनके उपदेश के बारे माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि जो हमारे ये ग्रंथ हैं शास्त्र जो है ये अगले 10,000 साल तक प्रमाण रहेंगे। आई विल गो बट दिस मैसेज विल रिमेन फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। 10,000 क्यों कहा, 20,000 क्यों नहीं कहा, एनी आइडिया, एनीबडी हैज़ गॉट, व्हाई ओनली 10,000 ईयर्स, व्हाई नॉट 10,002 ईयर्स? क्योंकि एक और रहस्य की बात ऐसी है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो जन्म लिया 1486 फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, होली के दिन उस दिन, तो महाप्रभु ने ऐलान किया था कि कलयुग जो है पहले 10,000 साल कलयुग के जो है वो स्वर्ण युग माने जाएंगे, द गोल्डन पार्ट ऑफ कलयुग। तो गोल्डन क्या है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है, और चैतन्य महाप्रभु के जन्म से 10,000 साल तक कलयुग का स्वर्ण युग जारी रहेगा, और इस 10,000 साल तक के टाइम के अंदर जो भी पतित जीव होगा या अच्छा जीव होगा या प्रगत जीव होगा, अगर वो भगवत नाम हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन आंदोलन में सहभाग लेगा और भक्त बनेगा तो उसी जन्म में वो गौलोक धाम को प्राप्त करेगा। लेकिन 10,000 साल के पश्चात घोर कलयुग आरंभ होगा, और उसके बाद में भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल रहेगा, नामुमकिन कुछ नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाएगा, राक्षस लोगों का जो प्रभाव है बढ़ जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद का जो स्वर्ण युग है उसके प्रभाव के अंदर आप लोग जो भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवत भक्ति को प्राप्त करोगे तो उसी काल में भगवत धाम में चले जाएंगे, इतना आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस स्वर्ण युग के अंत तक, कलयुग के अंदर के स्वर्ण युग के अंत तक ये किताबों का प्रभाव वैसे के वैसे रहेगा। बट माई डियर फ्रेंड्स एंड सर्स, डू नॉट वेट फॉर 10,000 ईयर्स टू कम। हाँ, हमने कहा कि 10,000 साल तक आपको चांस है, कोई बात नहीं, 5 जन्म ले लेंगे और थोड़ा वो आनंद ले लेंगे यहाँ पर, अभी तो हमारा तैयारी भी नहीं है, बोलते ना कि अभी एग्जाम में ड्रॉप लेंगे, अक्टूबर में बैठेंगे, पढ़ाई नहीं पूरा हुआ है ना, अक्टूबर में पढ़ाई नहीं होगी तो फिर बोले 2 सब्जेक्ट रह गए, अभी वो मार्च में देंगे उसको। इस तरह से आषाढ़ी कार्तिक की वारी जो है ना हम करते रहते, अभी आषाढ़ में एग्जाम, कार्तिक में एग्जाम, हमारे मराठी में कहते हैं मैं कैसे चल रहे वार्या, आषाढ़ी कार्तिक की वार्या कैसे चल रहे, चल रहे मैडम, आता किती सुटले, नहीं आता एकच बाकी है, 8 सुटले आता, 6 बार 7 बार 10 बार, वो कहते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में क्रॉनिक, दे आर क्रॉनिक स्टूडेंट्स हियर। तो हमको क्रॉनिक नहीं बनना है भौतिक दुनिया में, वी डोंट वांट टू बिकम क्रॉनिक स्टूडेंट्स हियर, एज अर्ली एज पॉसिबल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, व्हाट इज बेस्ट यू नो ना, यू लाइक टू गेट नॉट ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट पासिंग बट डिस्टिंक्शन, मे बी यू लाइक टू स्टैंड फर्स्ट ऑल्सो, ऑलवेज एम फॉर राइनोसोरस, डोंट एम फॉर अ स्पैरो, वाई नॉट बेस्ट, अगर हमको करना ही है ये बात, वाई नॉट बिकम बेस्ट इन दैट, वाई टू बिकम मीडियोकर, वाई वॉन्ट टू बिकम जस्ट पास्ट, जस्ट ट्रिकल्ड इन, धक्का दे के उनको प्रमोट किया गया अंदर, जाओ भाई तुम अभी 2 मार्क ले लो और जाओ ग्रेस हो जाओ, नो दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ, इन योर मटेरियल एग्जाम यू कैन अफोर्ड टू डू दैट, बट डोंट डू दिस विथ योर लाइफ एग्जाम, इसी जन्म में देर क्यों ना हो कोई व्यक्ति को यहाँ पर 50 साल में इंट्रोड्यूस हो गया होगा, कोई व्यक्ति को बचपन में इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, कोई कोई गोद में होंगे उनको ये बात मालूम हो गई होगी अपने माता पिताओं के प्रभाव से, कोई जवान अवस्था में होंगे, कोई बूढ़ी अवस्था में होंगे, कोई हमारे इस बीच में एक माता जी है 95 ईयर्स ओल्ड, डॉक्टर योगिनी की दादी है, दादी है ना, इज दैट राइट, नो प्रॉब्लम। जब आपको पता चलेगा, वो तो पहले से ही भक्त हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उम्र में पता चलेगा, डोंट वेस्ट टाइम, उसी जन्म में आपको भगवत की भगवान की प्राप्ति करनी है। दिस इज द ओनली लाइफ टाइम, डोंट थिंक, येस देर इज लाइफ आफ्टर लाइफ, बट डोंट कम फॉर दैट, दैट इज द मैसेज। इसी जन्म में आपको ये परिपूर्ति करनी है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज आप भक्ति के जिस अवस्था में होंगे, उस अवस्था से आप परिपूर्ण अवस्था में इसी जन्म में जितना समय उपलब्ध है उसमें आप प्राप्त कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। महाप्रभु जी की ये चैलेंज है आपके लिए, महाप्रभु जी विल टेक चैलेंज फॉर यू इफ यू वॉन्ट। अगर आप कहते मुझे चाहिए ही चाहिए, जैसे बालक बोलता है माता को, नहीं मतलब पाएजे, तो देते हैं उनको, बोले मम्मी मतलब हवा है, नहीं नहीं आता नहीं, उधर गया, शांत बैठ गया तो नहीं पूछेंगे आपस में, 10 बार बोलेगा बाप बालक मम्मी को, उठते बैठते खाना बनाते हुए कपड़ा पहनते हुए स्नान कर रहे अंदर, वो मम्मी मुझे चाहिए वो वस्तु, अरे बेटा स्नान करके आती बाहर, नहीं नहीं आप भी चाहिए मुझे, परेशान कर छोड़ेगा, घे चला था झूठा। ऐसा हमको करना चाहिए भगवान के लिए, भगवान को परेशान कीजिए कि आप हमको चाहिए, व्हेन यू विल गिव मी योर सेल्फ, कब मैं अपना बनूंगा आपका, कब आप मुझे अपना बनाएंगे, प्लीज बेग द लॉर्ड, पिटिशन हिम एवरी डे, व्हेन यू सी हिम एवरी डे इन दर्शन, बेग हिम, व्हाई टुमारो, व्हाई नॉट टुडे, ऐसे पूछो आप, तब जाके वो अपने आप को अर्पण करेंगे। आप उनको कितना चाहते हैं उतना वो आपको देंगे अपने आप को, अगर आप चाहते हैं 5% तो 5% दे देंगे, अगर चाहते हैं 100% तो 100% देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि हम, जैसा आप मुझको चाहोगे वैसा मैं अपने आप को अर्पण करूंगा आपको, सिंपल कहा है उन्होंने। हम लोग चाहते नहीं हैं, हमने चाहने में कंजूस है, वी आर माइजरली इवन आस्किंग ऑल्सो वॉट वी वॉन्ट। ठाकुर जी भक्ति सिद्धांत महाराज ने हमको वो निश्चय जो है वो सिखाया है कि जीवन में भक्ति कैसे करनी चाहिए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठाकुर जी महाराज का सत्संग हमें प्राप्त हुआ है उनके ग्रंथों के माध्यम से, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना है। हरे कृष्णा, इज दैट रूपंजलि हैज कम हियर, नॉट येट, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए बिफोर आई स्टार्ट अनदर स्टोरी।